نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دور قرآن 2017 کے ڈے 30 30ویں دن کا آغاز کریں گے اور آج کا ہمارا گول 28واں پارہ 28 پارہ جو سورت مجادلہ سے شروع ہوتا ہے اور سورت تحریم پہ پورا ہوتا ہے. پورے پارے میں کشمکش ہے. جب دین اور دنیا کے تقاضے آپس میں ٹکرائیں تو کیا کریں. ہر سورت کے اندر سے یہی میسج پائیں گے کہ زندگی میں ایک طرف کوئی رشتہ ہوتا ہے, دوسری طرف اللہ کا رشتہ بچانا ہوتا ہے. ایک طرف کہیں خوف ہوتا ہے اولاد اور بیوی بچوں کا, تو دوسری طرف اللہ کا دین ہوتا ہے. اور اسی طرح سے پہلا ہی واقعہ اس میں جو آئے گا اس میں غصے کا امتحان ہے کہ بعض دفعہ غصے میں اللہ کا حکم یاد نہیں رہتا. ہر صورت کے ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ پورے کا پورا پارہ گھریلو پارہ ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں گھریلو کہتے ہیں, یعنی عورتوں کا بہت تذکرہ ہے. پہلا واقعہ, پہلی صورت, بلکہ پہلا لفظ ہی ایک عورت سے متعلق ہے. خولا ان کا نام تھا. قد سمع اللہ قول اللتی. اللتی کون تھی؟ خولا تھی. اور پارے کی آخری مثال بھی ایک عورت ہی کہ امرأۃ فرعون. اور اسی طرح سے چار عورتوں کا تذکرہ ہے. اور اسی صورت میں ہم پڑھیں گے صورت ممتحنہ میں حاطب بن ابی بلتا نے اپنی بیوی اور بچوں کی محبت میں ایک غلطی کی, لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیا. پھر اسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی خشیت سے کانپ اٹھتا. تو اے انسان, جب تم اللہ کے دین کے راستے میں نکلو, جب تم اس کتاب کو تھامو تو بڑی مضبوطی سے تھامنا, کیونکہ الا ان خزو الشیطان هم الخاسرون. اس کے برعکس اگر تم نے اللہ کے گروہ میں خود کو داخل کرنا ہے, حزب اللہ میں شامل کرنا ہے, تو تمہیں اس کتاب کو تھامنا پڑے گا. پھر اسی طرح سے اسی صورت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ ایک واقعہ پڑھیں گے کہ جہاں آپ نے اپنی بیویوں کی خوشی کی خاطر ایک حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی اپنے اوپر. کوئی وجہ نہیں تھی, صرف اپنے لیے سوچ لیا, لیکن اللہ نے اس بات کو بنیاد بنا کر سب کو بتا دیا کہ جس طرح کوئی کسی طرح حرام کو حلال نہیں کر سکتا, اسی طرح حلال کو حرام بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح سے اس صورت میں ہم ایک ایسی تجارت کا تذکرہ پڑھنے والے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کی تجارتوں سے انسان کو بہت زیادہ امیر اور اللہ کی نظروں میں بھی مقرب بنا دیتی ہے. اور پھر اسی میں ہم سورت جمعہ میں پڑھیں گے کہ ایک طرف تجارت ہو اور ایک طرف اللہ کا دین ہو. یعنی ہر صورت میں آپ دیکھیں گے کہ دو تقاضے ٹکراتے ہوئے ملیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں بھی جب دین اور دنیا کے تقاضوں میں ٹکراؤ ہو تو اس وقت دین کو اختیار کرنے والا بنا دے. عام حالات میں اللہ کے دین کے لیے نکلنا, پانچ وقت کی نماز وقت پہ پڑھنا, سجدے رکوع قیام کرنا, اللہ کے حکموں کو ماننا بہت آسان ہوتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے کوئی نفس کی تسکین ہے, کیونکہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے الحمدللہ کہ نماز نہ پڑھیں تو چین ہی نہیں آتا, بے چینی, الجھن, ہائے نماز نہ پڑھنی ہو تو بھی بار بار بھول جاتا ہے انسان. لیکن جب دو مختلف تقاضے ٹکرائیں, مہمان ہے اور نماز کا وقت ہے, نیند ہے اور نماز ہے, شادی ہال میں بیٹھے اور مغرب کی اذان ہوگی, یہ وقت ہوتا ہے اصل میں پرکھ کا. اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی وقتوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو آگے بڑھنے والوں میں بنائے. سب سے پہلے ہے سورت مجادلہ. اس کو مجادلہ بھی کہتے ہیں, مجادلہ بھی کہتے ہیں, دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہے. ایک خاص واقعہ آیا ہوا تھا اللہ کے نبی کی زندگی میں. ایک صحابیہ تھی, ان کا نام تھا حضرت خولا. ان کے شوہر جو بوڑھے بھی تھے اور بیمار بھی تھے, انہوں نے اس دور کے رواج کے مطابق, یعنی جو اس وقت ابھی تک حکم تھا وہ کیا تھا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا انتی علیہ کزہری امی, تو میرے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں, यानी तेरी पुश्त मेरी माँ की तरह, मुराद ये था कि तू मेरी बीवी नहीं मेरी माँ है। इस तरह कहने से उस दौर के मुताबिक, आज नहीं उस दौर में, तलाक हो जाती थी और फिर ऐसी औरत के लिए जाहिर है कि उस घर को छोड़ना ज़रूरी होता था। तो ये बेचारी खातून जो थी ये अपने शौहर की खिदमत भी करती थी, लेकिन किसी वक्त गुस्से में आके शौहर ने ये लफ्ज़ बोल दिए। अब ऐसे वक्त में एक औरत के चलो जान छोटी सो लाख हो पाया, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत के मिजाज में नरमी पाई है। याद रखिए अपने शौहरों के मामले में अगर आप और मैं नरम नहीं है ना, तो फिर हम किसी से नहीं हो सकते, क्योंकि जिस इंसान के साथ दिन का बेशतर हिस्सा गुजरता है, जिसके कमाए हुए से खाकर और जिसके नाम पे आपका मेरा स्टेटस है, हम क्या हैं? मिसिस फुला, बेगम फुला, हमारे घर में गाड़ी है तो किसकी है और हमारा घर है तो किसने हमारे नाम पे किया? तो शौहर बहुत बड़ी नेमत होता है, अल्लाह ताला उसकी कदर की तौफीक दे। अब ये शुक्र करने की बजाय परेशान हो गई कि मैं तो छोड़ दूंगी, मुझे क्या, उस दौर में ये भी नहीं होता था कि एक छोड़ा तो आगे नहीं मिलना, मिल जाएंगे पर इनका क्या होगा। तो शौहर की मोहब्बत में इस घर को टूटने से बचाने के लिए नबी सल्लम के पास आ गई। अब अल्लाह के नबी को जाकर सुना दी बात सारी। अल्लाह के नबी खामोश हैं, क्योंकि पीछे कल ही पढ़ के आए हैं वमा यंतिकुनिल हवा, ये तो अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं है, इन हुआ इल्ला वाही यूहा, सूरह नजम की इब्तदाई आयत है। आप खामोश थे, तो इस खामोशी को तोड़ने के लिए खौला ने थोड़ी सी तकरार की, अल्लाह के नबी खामोश हैं, हम तो प्रेशर में आके कहते हैं हाँ वैसे तुम्हारे हालात देखकर तो लगता है कि तलाक नहीं हुई। जब अल्लाह के नबी कुछ ना बोले तो ये औरत मायूस हुई, मस्जिद नबी में मौजूद थी, जाकर वहाँ जाए नमाज बिछाया और चुपके चुपके अल्लाह ताला से बातें करने लग गई। आयशा सिद्दीका वहीं पास थी, लेकिन एक तो वो किसी की बात पे तवज्जो नहीं देती थी, जो कि अच्छा अदब होता है कि किसी की बात पे कान ना लगाओ। दूसरा ये है कि वो औरत बोल इतने आहिस्ता से रही थी कि आयशा को ये नहीं समझ आ रहा कि ये बोल क्या रही है, लेकिन उसको लग रहा था कि याहोजारी कर रही है। एक औरत जो मजलूम थी उस दौर के हालात के मुताबिक, और दूसरी औरत जो उसके पास बैठी है, अल्लाह सुबहान तला ने सातवें आसमान से ये सूरत की आयात नाजिल कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद समे अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलु कफी ज़ौजिहा वतश्तकी इलल्लाह, अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शोहर के मामले में तुमसे तकरार कर रही है और अल्लाह से फरियाद कर रही है। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है, वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार कर लेते हैं, इस अमल को जिहार कहते थे जोहर से, इनकी बीवियां इनकी माएँ नहीं हैं, इनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इनको जाना है। पीछे सूरत अल अहज़ाब में भी पढ़ चुके कि मुँह बोले रिश्तों की कोई हैसियत नहीं, वहाँ मुँह बोले बेटे की बात थी, तो यहाँ मुँह बोली माँ या मुँह बोले बीवी की बात नहीं हो सकती। ये लोग एक सख्त नापसंदीदा और झूठी बात कहते हैं, और हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें फिर अपनी इस बात से रुजू करें जो उन्होंने कही थी, तो कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं एक गुलाम आज़ाद करना होगा, इससे तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। और जो शख्स गुलाम ना पाए वो 2 महीने के पै दर पे यानी मुसलसल रोजे रखे, यानी अगर एक छूट गया तो दोबारा पहले से शुरू करना पड़ेगा, कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, और जो इस पर कादिर ना हो वो 60 मिसकीनों को खाना खिलाए। क्यों भाई इतना मुश्किल हुक्म? फरमाइए हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक सजा है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो इसी तरह जलीलो ख्वार कर दिए जाएंगे जिस तरह इनसे पहले के लोग जलीलो ख्वार कर दिए गए। हमने साफ साफ आयात नाजिल कर दी और काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब है। इस दिन यह जिल्लत का अजाब होना है जब अल्लाह इन सब को फिर से जिंदा करके उठाएगा और इन्हें बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए। और बात यह है अहसाख व नसूख, वो भूल गए मगर अल्लाह ने इनका सब किया धरा गिनकर महफूज रखा, और अल्लाह एक एक चीज पर शाहिद है। यहाँ पे वो वाकया पूरा होता है। आप देखिए इसमें मेरे आपके लिए बहुत सारी अमल की बातें हैं। पहली बात है कि अल्लाह सुनता है। हम समय अल्लाह लिमन खमीदा कहकर जब रुकू से उठते हैं उस वक्त भी इसको फील किया करें कि अल्लाह सुन रहा है, उसने सुनी है बात मेरी जो कुछ मैंने कह दिया। दूसरी बात, अल्लाह औरतों की भी सुनता है। तीसरी बात है कि अल्लाह सिर्फ नेकों की नहीं सुनता। एक आम औरत थी, अगर ये वाकया ना होता तो हम में से कोई हजरत खौला को जानता भी ना, कोई और इनकी नेकी, कोई और किसी जंग में कोई खूबी, इस्लाम के लिए इनकी कोई कोशिश नहीं मिली। सरासर एक इनका पर्सनल प्रॉब्लम था, घरेलू वाकया, जैसे आज भी दीनदारों के पास लोग अपने इश्यूज लेकर आते हैं, शौहर का झगड़ा, बीवी का, यानी एक बिल्कुल आम औरत थी, लेकिन अल्लाह ने उस आम औरत को खास कर दिया। क्या पता चला कि बाज़ दफ़ा अल्लाह कुछ हालात में इसलिए भी डालता है बंदे को, समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है, पर उसमें अल्लाह आपको आम से खास करना चाहता है। वही बात, एक आम का दौड़ना और एक खास का दौड़ना है। अल्लाह चाहता है कि जब ऐसी मुश्किल आए तो मेरी तरफ आओ। हजरत खौला ने असल में फ़फ़िरु इलल्लाह का सबूत दिया। किस तरह से दिया? कि जब अल्लाह की तरफ दौड़ कर आई, कब? जब उन पर मुश्किल पड़ी। हम ऐसे वक्तों में अमूमन क्या कुछ कर रहे होते हैं? अल्लाह की बना, हम तो डिप्रेशन में जाके परेशान सर बांध लेते, क्राइसिस सेंटर पे जाते, मियाँ ने तलाक दे दी, हुई है कि नहीं, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या हुई, हम लोगों में खोए रहते हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नहीं रजू करते कि वो हमसे क्या कहता है। फिर अगली बात इसमें देखिए कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का दौर था, तो एक औरत कहीं खड़ी, उसने रोक लिया। अब उमर अपने वक्त के खलीफा भी हैं और अमीरुल मोमिनीन हैं और कितनी खूबियों के मालिक, खड़े हैं तो सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं। जो लोग आपके साथ जा रहे थे वो थोड़े से इरीटेटेड हुए, थोड़ी सी उनको घबराहट हुई। खैर, जब वो औरत खुद रुकी, फिर उमर वहां से हटे, तो कहने लगे कि उमरे फारूक, आपने एक आम औरत के लिए इतनी देर लगा दी, क्या था, कह देते बाद में आना। जैसे मसरूफ इंसान हो और कोई उसका ज्यादा ही टाइम ले रहा है तो कुछ लोगों को उस पर उलझन आएगी। तो उमर ने कहा कि साथियों, मैं उस औरत की क्यों ना सुनूं जिसकी सातवें आसमान पे सुनी गई। तो मैं नहीं पता ये कौन थी, ये खौला थी। यानी हजरत उमर ने उस औरत की इज्जत की जिसकी अल्लाह ने इज्जत की। फिर अगली बात इससे क्या पता चलता है कि मुंह बोले रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, ये बेकारियात हैं। आज के दौर में लोग कहते हैं तू मेरी माँ की तरह है, ये फलां है, यानी तलाक देते वक्त बाज लोग किनायतन इशारतन कुछ लफ्ज बोल देते हैं, कुछ की तो जुबान पे चढ़े होते हैं पेट जुमले, जैसे वल्लाही विल्लाही कसम की तौर पे। तो याद रखिए कि ये लफ्ज छोटे हों या बड़े हों, इससे एहतियात करनी चाहिए। तलाक कब होती है? जब नीयत तलाक की हो, जब इरादा तलाक का हो। फिर इसके बाद आप देखिए कि इसमें एक और चीज भी जो आपके मेरे लिए अमल की थी, और वो क्या है, बहुत सारी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लफ्ज बोला शौहर ने बीवी को कि तू मुझ पे मेरी माँ की तरह। सजा कितनी मिली? 60 मिस्कीनों को खाना, 60 दिन मुसलसल रोज। और ये नहीं है कि जो मर्जी चूज करो, नहीं, पहली ऑप्शन, पहली नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो फिर तीसरी, सबसे पहली ऑप्शन अल्लाह ताला ने आप देखिए कि इधर जो दी है, और वो कहे कि तुम गर्दन आजाद कराओ, कई हजारों दिरहम लगता था, फिर एक गुलाम आजाद होता था। तो क्या पता चला सिर्फ एक बोल, उसकी इतनी सजा दुनिया में रखी तो आखिरत में कितनी सजा होगी? याद कर लें सूरत काफ, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीत, कल ही पढ़ कर आए हैं। जो लफ्ज़ तुम्हारी जुबान से निकलता है लिखने वाला उसको लिखता है, तो अपने बोलों को तोलें। खास तौर पे शोहर और बीवी का रिश्ता इतनी कच्ची डोरी से बंधा हुआ है, वल्लाही मजबूत तरीन और कमजोर तरीन रिश्ता है। निभने लगे तो सारे रिश्तों को पीछे डालकर यह रिश्ता सब पे मुहित हो जाता है, और टूटने लगे तो 20-25 साल की जिंदगी यूं पकड़ के उतारते हैं। खवातीन शेयर करती हैं, 20 साल के बाद तलाक दे दी, 25 साल, 30 साल, 35 साल एक घर में रहे, तलाक दे के अब अलग होके बैठे, भाई आपको क्या हुआ, इतनी देर में तो वैसे ही बंदे का दिल टूट जाता है। तो लिहाजा एहतियात से बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। फिर इसके बाद अगली बात यह है कि अल्लाह के नबी भी मुख्तारे कुल नहीं थे, वो अपनी मर्जी से हुक्म नहीं बदल सके। तो आज किसी दीनदार को हक पहुंचता है कि लोगों को तसल्लियां देने और सहूलतें देने के लिए मसलों को नरम कर दे? अब इस वाक्य में वो औरत जो बैठ के चुपके चुपके बात कर रही थी, उससे एक बड़ा प्यारा इशू हमें समझाया। आयत 7, अलम तरन अल्लाह यालमु मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, क्या तुमको खबर नहीं कि जमीन और आसमान की हर चीज का अल्लाह को इल्म है? कभी ऐसा नहीं होता कि तीन आदमियों में कोई सरगोशी हो और इनके दरमियान चौथा अल्लाह ना हो। तो तीन लोग बैठकर जब सरगोशियां करें, गीबत करें, कोई इधर उधर की बातें डिस्कस करें, तो याद रखें कि चौथा अल्लाह भी है। या पांच आदमियों में सरगोशी हो और इनके अंदर छठा अल्लाह ना हो, खुफिया बात करने वाले ख्वाह इससे कम हो या ज्यादा, यानी दो या बहुत सारे हों, जहां कहीं भी वो होंगे अल्लाह उनके साथ होता है। फिर क्यामत के रोज में इनको बता देगा कि उन्होंने क्या कुछ किया। अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। यहां जरा सा शऊर से अपना मुहासबा करते हैं। जब अकेली अपनी किसी दोस्त से, जिससे बड़ा दुख सुख है उससे, जब तीन दोस्तों में जो बड़ी लाइक माइंडेड है, जब चार लोग जो बिल्कुल मेरे हम ख्याल हैं, कोई बात करती हूँ, तो याद रहता है कि इस वक्त अल्लाह भी सुन रहा है। देखिए, मैंने इस पूरे पारे में, बल्कि आगे भी मैंने पॉइंट नोट किए हुए हैं, जितना कम बोलेंगे उतना बच जाएंगे। इस जुबान को सी दें, जिप द माउथ। बच्चों के स्कूलों में, क्लासेस में बच्चों को साइलेंट टाइम सिखाया जाता है, कुछ नहीं बोलना, चुप, मुंह पे उंगली रखो, 2 मिनट चुप, अगले दिन 3 मिनट चुप, अगले दिन 5 मिनट चुप। चुप रहना बोलने से बहुत मुश्किल है। लोग सोचते हैं बोलना, बोलना में बड़ा बोलना आता है, जिनको पता लग जाए ना कि लफ्जों का वबाल किस पे पड़ता है, आप कहते हैं आखिरत में नहीं दुनिया में भी। कल की हदीस याद करें, एक जुमला एक कलमा बंदा बोलता है और उसकी वजह से या जन्नती हो जाता है या जहन्नमी। तो ये बात कि अल्लाह मेरी बात को सुन रहा है, इसके बाद ये कहना पड़ता है कि किसी को ना बताना, कोई पूछे तो ये कहना, ये ना करना वो ना करना, तो हर वक्त अल्लाह की मौजूदगी का एहसास रखे। क्या तुमने देखा नहीं इन लोगों को जिन्हें सरगोशियां करने से मना कर दिया गया था, फिर भी वो वही हरकत किए जा रहे हैं जिससे इनको मना किया गया था। ये लोग छुप छुप कर आपस में गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें करते हैं। अब खौला का वाक्या खत्म। यहां से मुनाफिकीन की एक आदत की तरफ पता चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुंह भर के लोगों को अच्छा या बुरा नहीं कहा था, हर इंसान को मौका देते थे, लेकिन जो जिसके अंदर होता था वो आपके सामने तो नहीं लेकिन अकेले में उगल देता था। तो अल्लाह के नबी मसे नबी में होते। आप देखिए कि इस्लाम में कुछ कैबिनेट या काबीना या कॉन्स्टिट्यूशन को पर्सनल चीज नहीं होती। आज तो जहनों में आता है ना कि किसी मुल्क का कानून बनता है या पार्लियामेंट हाउस है तो बड़ा सीक्रेट होगा। मसलन अगर आज आप इस्लामाबाद जाते हैं तो क्या मुझे आपको आराम से पार्लियामेंट में जाने की इजाजत होगी? कभी भी नहीं जाने देगा। आप अमेरिका जाएं और आपको वॉशिंगटन डीसी में कोई जाने देगा व्हाइट हाउस में, के जाओ चले जाओ। आज के हुक्मरान जो आज के बड़े लीडर्स बहुत ही पर्दों में छुप छुप के आगे रहते हैं। अल्लाह के नबी का मामला बड़ा ओपन था, मस्जिद नबी में उधर नमाज पढ़ाते, उधर ही बैठ के कानून होते, उधर ही किसी के रिश्ते नाते, उसी उधर मीटिंग होती। तो कुछ लोग ऐसे जो अभी तक दिल से उनका दिल नहीं जुड़ा था, अभी कह लीजिए कि नया नया सफर था, या अभी हो सकता है जुबान पे वो बात ना आई हो जो दिल में आ चुकी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते थे, और खास तौर पर यहूद, और यहूद के कहने पर भेजे हुए लोग, यानी वो मुसलमान नुमा मुनाफिक कह लीजिए, तो वो अल्लाह के नबी की महफिलों में बैठते, सुनगुन लेते, यादी टूटी पुटी ली कोई बात, फिर बाहर जाकर उसको डिस्कस करते थे। और कभी बोलते, अच्छा क्या कहा था, अच्छा क्या कहा था, किधर हुआ, अच्छा मैंने ये सुना, तुमने ये सुना था, तुम्हें ये पता है, ये तुम्हें मालूम है, बस ये बातें। इसको नजवा कहते हैं। आप देखिए कि यहाँ भी लफ्ज है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं सूरत निसा में यह लफ्ज आया था। तो नजवा होता है किसी इज्तमाही मामले को दो लोगों में डिस्कस होना। मसलन अगर घर में आप पूरी फैमिली के साथ मिलकर एक चीज डिस्कस कर चुकते हैं और उसमें सबकी राय मिल जाती है तो इट्स ओके। बच्चों से पूछ लीजिए कि आप करना है ईद पे क्या पकाएंगे, किधर जाना है इस मौके पे, समर में इस सब कहाँ जाएं, छुट्टियां किधर की करनी है, सारे बैठे मियाँ बीवी बच्चे, फैसला हो गया खत्म, आपने डिसाइड कर दिया। नहीं, अब उसके बाद दो लोग बैठकर उस मसले के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दें, याद रखें सिर्फ इससे लड़ाई होगी, बदगुमानी होगी और महरूमी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी ने जब ये बात देखी, अब अल्लाह तो नहीं वो कह रहे, अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा, कुरान में ये आयतें आ गई। और मैं हैरान होती हूँ कि जो लोग सिर्फ कुरान खानी के लिए कुरान पढ़ते हैं, जस्ट कुरान बराए कुरान, वो इन आयतों को क्या करेंगे? यही वजह है कि आज हमारा ये कुरान हमारे अमल में नहीं आता। रात को हमने यही पारा पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह तरावियों में पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे साथ, तो पूछ रहे थे हम लोग एक दूसरे से कि क्या सीखा, इसमें क्या सीखा, उसमें क्या सीखा। तो ये शुरू से आदत डालिए अपने बच्चों को, एक सूरत पढ़ाएं फिर उसका तर्जमा फिर उसमें मोटी मोटी बातें। तो अल्लाह ताला ने अब जिस हुक्म से यहाँ कहा उसको दोबारा आगे कंटिन्यू करके देखिए, इतनी सरगोशी नहीं करनी चाहिए कानों में बातें करना। इधर आओ, आपने फरमाया जब तुम में से तीन लोग हों तो दो कानों में ना बातें करें। क्यों? कान में बात करेंगे ये बात तीसरे को गम में डाल देगी कि ये मेरी बात। अच्छा, शैतान का इतना बड़ा वसवसा ये होता है तेरी बातें हो रही है, क्यों भाई तुम बहुत अहम हो, मुझे पता है मेरी बात हो रही है, मुझे सुनाया जा रहा है, मेरा जिक्र है, नाम ना लें तो क्या पता नहीं चलता। ये बातें सिर्फ शैतान के वसवसे हैं। इस पे एक लफ्ज बोल दिया करें या एक जुमला बोल दीजिए कि औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। और याद रखिए जिसको अपने कुछ होने का एहसास होता है ना उसको ज्यादा एहसास होगा। नहीं समझे? घर में दो चार बहू बेटियां हैं, एक अपने काम से काम रखती है, उसको कोई परवाह नहीं होती सास क्या कह रही है, और एक है वो बड़ी क्यूरियस है, हर वक्त उसको अपनी फिक्र है, वो हर बात में कहेगी अम्मी ने मुझे कहा, ये सास मेरे बारे में बात कर रही है, कमरे में छुपी हुई है यकीनन, ये मेरे बारे में किसी को फोन पे कह रही है। सेल्फ कॉन्शियस बंदा हर गलत चीज को अपने ऊपर लेता है और हर ठीक उसको दूसरे में नजर आ रही होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा मत करो। क्या तुमने देखा नहीं इन लोगों को जिन्हें सरगोशियां करने से मना किया गया था, फिर भी वो वही हरकत किए जाते हैं जिससे इन्हें मना किया गया था। ये लोग छुप छुप कर आपस में गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें करते हैं, और जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें इस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरह अल्लाह ने तुम पर सलाम नहीं किया। क्या कहते थे? सलाम अलैकुम, नाउजुबिल्ला, तुम पे मौत हो। दिल में कुदूरत हो ना तो सलाम भी खुल के नहीं होती। अब अल्लाह के नबी को तो नहीं पता, अल्लाह ने बता दिया कि, और अपने दिलों में कहते हैं कि हमारी इन बातों पर अल्लाह हमें कोई अजाब क्यों नहीं करता। यानी अंदर से हंसते थे, देखो देखो हमने तो इनके ऊपर मौत की बद्दुआएं भी कर दी, हम तो इतनी बुराइयां करते हैं, अल्लाह हमें फिर भी नहीं पकड़ता। फरमाए पकड़ेगा, हस्बुहुम जहन्नम यसलौनहा, इनके लिए जहन्नम ही काफी है, इसी का वो ईंधन बनेंगे, बहुत बुरा अंजाम है इनका। तो यहाँ पे ये टॉपिक पूरा हुआ। यहाँ इस पे एक छोटी सी बात हम अपने जनरल माशरती रूल की भी करते हैं, लोग हमें शादियों में बुलाते हैं, बस यही शादी हॉल ही है ना जिसमें हम बैठे हैं, मेरा ख्याल है 4-5 हज़ार यूरो तो लगाते ही होंगे लोग एक वक्त की दावत पे, ऐसे ही है ना, 100 लोगों की भी दावत करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल के 4-5 हज़ार से कम या इससे भी ज़्यादा ही लगता होगा। अगले ने आपके ऊपर पैसा लगाया, आपको इज्जत दी, आपको इन्विटेशन कार्ड दिया, आपको वार्म वेलकम किया, आप बताइए मुझे कि जब हम उस शादी में 2-2.5-3 घंटे गुजार के यहाँ से उठ के अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो अमूमन क्या बातें करते हैं, ये भी नजवा है, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ये नहीं था, गोश्त सख्त था, लोग तो कहीं तो वहां जाने की जरूरत नहीं, यही शुरू हो जाते हैं, दुल्हन बड़ी लग रही थी, अम्मा ये थी, सास चुप चुप थी, बाप परेशान था, लड़का को खुश नहीं लग रहा था, दुल्हन छोटी थी, लड़का छोटा था, लड़की बड़ी थी, क्या हमारा आपका ये नसीब है? तो देखिए कुरान ने मेरा आपका अगर ये तस्किया नहीं किया तो फिर हम ज्यादा नहीं ले सके। आप अपने ऊपर लीजिए, आप स्टूडेंट, अभी आप में से तो कोई इनमें से किसी चीज को नहीं फील कर रहा, आप यहां बैठे, देखिए हम कब कहते हैं कि हर चीज अच्छी होगी, 10 चीजें गलत होती होंगी रोज, आपको तो पता भी नहीं लगता होगा, मुझे तो 20 दिखती होंगी, ठीक है। अब आप यहां बैठे, आपको कोई चीज बुरी लगी गई, क्या करें, वहां जाए बैठ, ना 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 उधर नहीं जाना, नहीं फोन नहीं उठाने देते, बेल नहीं, बच्चा रोए तो चीख जाते हैं, ये है वो है, जो 2-4 लोग सोच भी रहे होंगे कि हम बात करेंगे आएंगे, वो नहीं आएंगे ना, करना क्या चाहिए? बेस्ट थिंग, आपको कोई किसी सिस्टम में किसी जगह कोई भी चीज ऐसी दिखती है कि जो नहीं होनी चाहिए, सजेशन बॉक्स, यहां तो मुझे नहीं पता इन्होंने रखा हुआ कि नहीं, हमारे अपने स्कूल में सबसे मेन डोर पे जो प्रोमिनेंट चीज सजेशन बॉक्स पड़ा, और मैं अपनी ये गवाही दे सकती हूँ कि मैं कोई और बॉक्स देखू ना देखू मुझे कभी केयर ही नहीं, लेकिन आते जाते शाम को मैं जरूर सजेशन बॉक्स देखती हूँ, कोई शिकायत, कोई बात, कोई फीडबैक, कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात, तभी तो पता चलेगा। तो वो बुरी बात हो ना उसको बतानी चाहिए जिससे शिकवा है, ताकि इसलाह कर ले, खैर ख्वाही तो यही है, और कोई अच्छी बात है वो बाहर जाके खबर दें। तो ये मिजाज उम्मत मुस्लिमा में जब आएगा आप देखिए हमारी मुसलमानों की बहुत इज्जत होगी। अल्लाह रहम करे हमारा तो मीडिया में क्या सिखाता है, खबरें सुनने के लिए आप जरा टीवी तो ऑन करके देखें, हर बुराई आपको अपने मुल्कों के अपने मुसलमानों की खबरों की सूरत में दिखेगी। आप कहते हैं कि नॉर्वे में जराइम की खबर देना ममनू है, मुझे आती भी नहीं सुननी और ना कभी है ही नहीं घर में ये इशू, लेकिन जो लोग खबरें सुनते हैं वो कहते हैं नॉर्वेजियन टीवी से नॉर्वे में कहीं अगर कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, उसकी खबर मैन है, और उसका नतीजा पता क्या, हम खुद सब कहते हैं वहां रहते हुए कि लगता है इधर तो ना कोई चोरी, ना चिकारी, ना कत्ल, ना गारत, ऐसे उनकी पुलिस भी देखो, उनकी पुलिस को भी पुलिटी लिखा होता है, अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़े तो पुलिटी, तो मैं और मेरे हस्बैंड कहते हैं पुलाइट, वो लिखे तो पुलाइट ही होता है वो लिखा हुआ, तो मैं कहते ये बड़े पुलाइट है, उनकी पुलिस को देखकर डर ही नहीं लगता, हेलो हाय इसमें कहीं रास्ता भूले हो, पुलिस मैन सबसे ज्यादा आपको गाइड करते हैं जाए आए आपको, क्योंकि अपने मुल्क की इज्जत बना ली उन्होंने। और अल्लाह की पनाह में एक आध दफा मुझे ऐसे अपने चैनल से खबरें सुनने का मौका मिला, ये हो गया धमाका, ब्रेकिंग न्यूज, ये हो गया उधर मिलावट हो गई, खाने के नाम पे जहर दे रहे हैं, तो मैंने कहा ये आपने किसी दूसरे नाम नहीं लेती, लेकिन मैंने कहा ये फुला मुल्क का चैनल है जो पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें बोल रहा है, कहा नहीं ये पाकिस्तानी चैनल है, यकीन करें ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान का कोई दुश्मन चैनल है, और यहां बैठ के बम धमाके फूट गए, मर गए, टूट गए, जिन 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान जाना था वो भी नहीं जाएंगे कि पता नहीं एयरपोर्ट पे गोलियां चल रही होंगी। तो हमेशा याद रखिए उम्मतों का ये मिजाज होना चाहिए, हर जगह डिफरेंसेस होंगे, हर जगह खराबियां होंगी, हर मुल्क में होती हैं, क्या ख्याल है नॉर्वे में खबरों में नहीं आती तो नहीं होती, लेकिन वो उसको टैकल करते हैं, सॉल्व कीजिए, रिजॉल्विंग माइंड बनाइए, ना कि ट्रबल शूटर, हर वक्त ट्रबल मेकिंग। तो अल्लाह ताला ने इसके बाद अब अगले हिस्से में इसी की थोड़ी सी मजीद बात कही।